कल की कथा सुनी ली। पांडव लोगों ने जुआ खेला, पांडव लोग हारते गए। ज्यों ज्यों युधिष्ठिर जुए में प्रवृत्त हुए, त्यों त्यों उनकी बुद्धि भी विकृत हो गई। इसका प्रमाण कि भाइयों को दांव पर लगा दिया और स्त्री को भी दांव पर लगा दिया। ये क्या करना चाहते हैं युधिष्ठिर? एक तरफ तो धर्मावतार है और एक तरफ ये जुआ खेलने में लग गए। जुआ का निषेध भी करते हैं, जुए का दोष भी बताते हैं, फिर भी युधिष्ठिर महाराज जुआ खेले। यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान संतों ने यह दिया है कि आप सोचिए, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव कोई सामान्य प्राणी नहीं थे, ये देव सृष्टि के प्राणी थे। हर चीज में इनका विचार बड़ा गंभीर होता था। फिर जुए के विषय में क्या हुआ, वो ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम इतने नेकी पर चले, इतना हमारे पास बल, इतना बड़ा राज्य, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र हमारे पास, सब कुछ जो चाहिए वो हमारे पास, लेकिन एक जुए की लत से हमारा कितना नुकसान हुआ, हम बर्बाद हो गए। जो लोग किंचन मात्र भी धर्म नहीं करते, जिनके पास कोई बल भी नहीं, कोई धन भी नहीं, वे लोग यदि इस जुए में पड़ जाएंगे, उनकी क्या दशा होगी, यह उनको बताना था। महाभारत के समय में समाज को एक ऐसी शिक्षा देनी थी जिसमें एक बार ऐसा काम करें कि लोग उसको देख करके डरने लग जाएंगे, अरे युधिष्ठिर की दशा होगी, हमारी क्या होगी। इसलिए ये सब प्रपंच हुआ। दुर्योधन आदि ने तो नीचता की कल पराकाष्ठा ही पार कर गई। सब आपने सुनी लिया द्रौपदी के साथ जो हुआ। द्रौपदी का कितना धैर्य है कि अपने पतियों को छुड़ा लिया, धन वापिस नहीं मांगा। धन उन्होंने नहीं मांगा और अंत में धृतराष्ट्र ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम अपना धर्म, तुम अपना धन वगैरह लेकर सब जा सकते हो, मैं बूढ़ा तुम्हारा ताऊ हूं और मेरे पुत्र ने जो कर्म किया है उसको तुम भूल जाना। ऐसे करके सांत्वना दी और वे रवाना हो गए। यहां तक कथा हुई। जनमेजय ने पूछा कि हे वैशंपायन जी महाराज, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपना धन भी, रत्न भी, राशि भी, सब कुछ ले जाने की अनुमति दे दी, तब दुर्योधन आदि की क्या दशा हुई होगी? उनके मन के ऊपर तो एक बहुत बड़ा वज्राघात हुआ होगा ना, फिर क्या हुआ? वैशंपायन जी कहते हैं, धृतराष्ट्र ने पांडवों को धन संपत्ति के साथ जाने की अनुमति दे दी, यह सुनते ही दुशासन अपने बड़े भाई दुर्योधन के पास गया और बड़े दुख के साथ कहा कि भैया, बूढ़े राजा ने हमारे बड़े कष्ट से प्राप्त धन को खो दिया, सब धन शत्रुओं के हाथ में चला गया। अब कुछ सोच विचार कर करना हो तो करो, सारे जगत में हम लोग अपमानित भी हो गए और मिला भी कुछ नहीं, क्या करना चाहिए आप सोचो। यह सुनते ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने आपस में सलाह की और सब के सब एक साथ धृतराष्ट्र के कक्ष में गए। उन्होंने बड़े विनय से कहा, हे महाराज, यदि इस समय हम लोग पांडवों से प्राप्त धन के द्वारा ही राजाओं को प्रसन्न करके युद्ध के लिए तैयार कर लेते तो हमारी क्या हानि थी। इतना धन हमारे पास होता, सब राजाओं को अपने अधीन कर लेते, आपको क्या हानि थी। देखिए, डसने को तैयार क्रोध में भरे सांपों को गले में लटकाकर या पीठ पर रखकर कौन बच सकता है। भीमसेन ने भरी सभा में प्रतिज्ञा की है, वो भयंकर सर्प के समान इस समय छिड़ा हुआ है और आपने उनको इस अवस्था में छोड़ दिया। पांडव इस समय सर्प के समान फुंकार करते होंगे, वे प्रतिशोध की भावना रख करके गए हैं और वहां जाकर वे आगे की कुछ न कुछ गहरी राजनीति लगाकर अपने पक्ष के सब राजाओं को इकट्ठा कर शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर बड़ी भारी सेना लेकर हमारे पर धावा बोलेंगे और हम में से एक एक को चुन चुन कर मारेंगे, किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। आपको मालूम है क्या वे इंद्रप्रस्थ गए हैं? नहीं, इस समय वे राजाओं के पास सेना इकट्ठा करने के लिए गए होंगे। हमने एक बार उनसे अब बिगाड़ करके कुछ ठान ली, अब वे हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपने तो बड़े सीधे सादे शब्दों में कह दिया कि युधिष्ठिर, दुर्योधन का अपराध भूल जाओ, द्रौपदी के साथ जो हुआ वो भूल जाओ। जितनी सहजता से आपने कहा है क्या वो भूलेंगे? द्रौपदी को जो क्लेश पहुंचा है उसे उनमें से कोई क्षमा करेगा? इसलिए एक बार और हमारे साथ जुआ खेलने का मौका दे, और अब की बार राज्य नहीं, स्त्री नहीं, कोई अपयश का दाव लगाने वाला यहां जुआ नहीं खेलेंगे। बस एक शर्त रहेगी, वनवास। जो जुआ खेलेगा वो वनवास में जाएगा, इसमें तो कोई हर्जा नहीं है महाराज। चाहे हम वनवास में जाएं हारे तो, चाहे वो जावे तो, कोई हर्जा नहीं। वनवास के लिए थोड़ा सोचा जाए कि 12 बरस तक मृग चर्म पहन करके वनवासी रहे और 13वां वर्ष आए तो वहां किसी को पता न चले, अज्ञातवास में रहे, और यदि पता चल जाए, चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो कोई हो, फिर वापस 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये शर्त कोई खराब शर्त नहीं है, इस शर्त पर आप जुआ खेलने की फिर आज्ञा दीजिए। यह काम बहुत जरूरी है पिताजी, पासी डालने में हमारे मामा बड़े चतुर हैं और पिछली बार पासा फेंकने से इनको और अभ्यास हो गया है। यदि पांडव कदाचित ये शर्त पूरी कर लेंगे तो हम इतने समय में बहुत से राजाओं को अपना मित्र बना लेंगे, बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर लेंगे। उस समय हम युद्ध में पांडवों को खूब आसानी से जीत सकेंगे। इसलिए आप ये बात मान लीजिए और पांडवों को दोबारा द्यूत क्रीड़ा में बुलाइए। युधिष्ठिर ने कहा, वत्स, यदि ऐसी बात है इसमें तो कोई हर्जा नहीं है, परंतु पांडव तो दूर चले गए हो, उनके पास हम अभी दूत भेज देते हैं। वे जहां भी जाएंगे दूत उनको सूचना दे देंगे, आपकी आज्ञा को सुनकर वे जरूर आएंगे। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर द्रोणाचार्य, सोमदत्त, वाल्ही, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, युयुत्सु, भूरिश्रवा, भीष्म पितामह और विकर्ण सभी ने एक स्वर से कहा, महाराज अब जुआ मत खेलो, ओम शांति ही शांति ही शांति। परंतु धृतराष्ट्र ने अपने सभी दूरदर्शी मित्रों की सलाह को ठुकरा दिया और कहा कि वनवासी जीवन में बड़ी पवित्रता होती है, सभासद हो, पितामह है, आप विचार करो विदुर, वनवासी जीवन कभी किसी के लिए कष्टदायक नहीं हुआ। वनवास में तो राम भी गए थे तो उनका चरित्र कितना निखर गया था। वनवास के लिए यदि शर्त रखी जाती है तो मुझे जुए में कोई दोष नहीं दिखता है। आखिर उन्होंने पांडवों के पास दूत भेज ही दिया। ये सब सुनकर गांधारी का हृदय एकदम शोक संतप्त हो गया। उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र से कहा, स्वामिन, दुर्योधन जन्मते ही गीदड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था, इसीलिए उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने कहा था कि इस पुत्र का परित्याग कर दो। ये बात मुझे अभी भी मालूम है और अब तो और स्पष्ट हो गया है कि ये कुरुवंश का नाश करके छोड़ेगा। आर्य पुत्र, आप अपने दोष से सबको विपत्ति के सागर में डुबा रहे हैं। राजा तो वो होता है जो सबको विपत्ति से उबारे, और आप सारे परिवार को विपत्ति के सागर में धकेल रहे हैं, इन ढीठ मूर्खों की हां में हां मिला रहे हैं। हे आर्य पुत्र, इस वंश का नाश मत कीजिए, बंधे हुए पुल को मत तोड़िए, बुझी हुई आग को दोबारा मत धधकाइए। पांडव शांत और बैर विरोध से विमुख रहते न पांडव शांत हैं, बैर विरोध से विमुख रहते हैं, उनको अब दोबारा क्रोधित करना ठीक नहीं है। यद्यपि आप ये बात जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिला रही हूं, इतना पुत्र मोह आपके लिए घातक सिद्ध होगा। दुर्बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का भला बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, पर आप तो वृद्ध हो, आप ये बालकों की सी बातें करते हैं, कितना अनुचित काम है। ये पांडव कौन है? ये आप ही के भाई के पुत्र हैं, आज इनके पिता संसार में नहीं है, आप इनके पिता से बढ़कर हैं, इनको भी अपने छाती से लगा कर रखिए। ये कहीं दुखी होकर आपसे अलग न हो जाए, इनके मन में कभी यह न आ जाए कि हम धृतराष्ट्र का कभी मुंह नहीं देखना चाहते, हमारा ताऊ होकर हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। कुलकलंक दुर्योधन को त्यागना आपके लिए श्रेयस्कर है। मैंने उस समय मोहवश विदुर की बात नहीं मानी, यदि इसका त्याग उसी समय कर देती आज उसका और ही स्वरूप होता। ये सब उसी का फल है, जो बीत गया सो बीत गया। अब भी समझ जाइए, शांति धर्म और मंत्रियों की सम्मति से अपने विचार शक्ति को सुरक्षित कीजिए, प्रमाद मत कीजिए। बिना विचारे काम करना आपके लिए महान दुखदायी होगा। राज लक्ष्मी क्रूर के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। सरल पुरुष के पास जाने पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। गांधारी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्रिय यदि कुल का नाश ही होना है तो होने दो, मैं उसमें क्या करूं। अब तो दुर्योधन और दुशासन जो चाहे वो होता रहे, अब पांडवों को आने दो, उनको मैंने बुलाया है और मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन उनके साथ फिर जुआ खेलेंगे और प्रिय दुर्योधन का साथ शकुनी देंगे, खेलेंगे। जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र के इन वचनों से गांधारी का हृदय रोने लग गया। इसके बाद गांधारी कुछ नहीं बोली। इधर धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रातिकामी पांडवों के पास पहुंचा। वे अभी मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुके थे, तब तक प्रातिकामी ने कहा, राजन फिर सभा जोड़ी जा रही है। धृतराष्ट्र ने कहा है कि आप फिर वहां चलकर जुआ खेलिए। धर्मराज जी बोले, सभी प्राणी दैव के अधीन है, उसी के अनुसार शुभ और अशुभ फल भोगते हैं, इसमें किसी का कोई बस नहीं है। चलो फिर जुआ खेलना पड़ता है तो ऐसे ही सही। मैं जानता हूं ऐसा करने से वंश का नाश हो जाएगा, फिर भी मैं अपने बूढ़े ताऊ जी की आज्ञा को नहीं टाल सकता। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ फिर लौट आए। वे शकुनी बड़ा छली है इस बात को खूब अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए। धर्मराज की ये स्थिति देखकर उनके मित्रों को बड़ा कष्ट हुआ। युधिष्ठिर महाराज वापिस हस्तिनापुर पहुंच गए। सभा लगी। शकुनी ने धर्मराज को संबोधन करके कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, हमारे वृद्ध महाराज ने आपकी धनराशि आपके पास छोड़कर कितना बड़ा उदारता का परिचय दिया है, ये सुनकर हमको बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हम एक दाव और लगाना चाहते हैं। ये जुआ प्रसन्नता के कारण से रखा है, यदि हम आपसे जुआ में हार जाएं तो मृग चर्म धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहेंगे और 13वें वर्ष किसी नगर में अज्ञात रूप से रहेंगे। यदि उस समय हम पहचान लिए गए तो फिर 12 वर्ष वन में घूमना रहेगा, और यदि हम आपको हरा दें तो द्रौपदी के साथ आप लोग कृष्ण मृग चर्म धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहे और 13वां वर्ष अज्ञातवास करें, और यदि उस समय कोई पहचान ले तो फिर 12 वर्ष वन में रहना होगा। इस प्रकार 13 वर्ष पूरे होने पर आप या हम उचित रीति से अपना अपना राज्य ले लेंगे। 12 वर्ष के बाद तो राज्य मिल ही जाएगा, ये तो कोई खराब शर्त नहीं है युधिष्ठिर महाराज, इस शर्त पर तो हम लोग तैयार हो गए खेलने के लिए। शकुनी की बात सुनकर सभी लोग खिन्न हो गए, वे बड़े उद्वेग से हाथ उठाकर कहने लगे, अंधे धृतराष्ट्र जुए के कारण आने वाले भय को नहीं देख रहे हो, परंतु उनके मित्र तो धिक्कार के योग्य हैं, क्योंकि वे समय पर इनको सावधान नहीं कर रहे हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, इतने अंधे मत होइए, आंखों से तो अंधे हैं, अकल से अंधे मत होइए, आवाजें आने लगी। सभासदों की ये बात युधिष्ठिर महाराज भी सुन रहे थे, समझ रहे थे कि इस बार के जुए का क्या दुष्परिणाम होगा, समझ रहे थे। फिर भी उन्होंने यह सोचकर, ध्यान से सुनना ही, अब समाधान हो गया, फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि इस जुए के दाव को खेले बिना कौरवों का सर्वनाश होने वाला नहीं है, इसलिए वो जुए में प्रवृत्त हुए। ये तो अच्छी बात है, कबीर जी रो काल से मा तो खराब ही उड़े। ये दोबारा जुआ क्यों खेला, ये दोबारा जो जुआ खेला गया है, उन्होंने ये सोचकर कि कौरवों का विनाश काल इस जुए खेले बिना किसी प्रकार नहीं हो सकता, इसलिए जुआ खेले वो, ठीक किया, अब की बार ठीक किया। शकुनी ने उनकी स्वीकृति पाते ही खूब बड़े विचित्र ढंग से पासे डालने लगे और युधिष्ठिर से कहो, युधिष्ठिर अब महाराज युधिष्ठिर की जगह बनवासी युधिष्ठिर हो जाओ, ये दाव मैंने जीत लिया है। जुए में हारकर पांडवों ने कृष्ण मृग चरम धारण किया, वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी ऐसी स्थिति देखकर दुशासन चिढ़ाते हुए कहने लगा, धन्य हो युधिष्ठिर, धन्य हो, अब महाराज दुर्योधन का शासन प्रारंभ हो रहा है, अब पांडव विपत्ति में पड़ गए। राजा द्रुपद के पास समाचार करो कि तुम बड़े बुद्धिमानों में बुद्धिमान कहलाते हो, तुमने अपनी कन्या ऐसे पांडवों को दी। अरे ऐ पांडव, तुम सब नपुंसक हो, तुम्हारे में कोई बल नहीं है। द्रुपद की बेटी, द्रौपदी को बोलता है, द्रुपद की बेटी, अब तो ये पांडव थोड़े से वस्त्र और मृगचर्म से बड़ी गरीबी के साथ वन में जीवन बिताएंगे, फिर भी क्या तू इनके साथ प्रेम करेगी? अब किसी मन चाहे पुरुष का वर क्यों नहीं कर लेती? देश देशांतर के यहां बहुत राजा आए हैं, कर लो किसी से प्रेम। दुशासन बकता रहा, भीमसेन ने जोर से ललकार कर कहा, अरे क्रूर, तूने हमें अपने बाहुबल से नहीं जीता है, छल विद्या के बल पर जीत कर तू शेख ही बगार रहा है, ऐसी बात केवल पापी कह सकते हैं। तू इस समय कड़वे वचनों के बाण से हमारे मर्म स्थल पर चोट पहुंचा रहा है, मैं रणभूमि में तेरे मर्म स्थानों को काट कर इन सब वचनों की याद दिलाऊंगा। आज जो लोग क्रोध या लोभ के वश में होकर तेरा पक्षपात कर रहे हैं, तेरे रक्षक बन रहे हैं, उन्हें मैं अपने इष्ट मित्रों सहित यमराज के हवाले न कर दूं तो मुझे अपने पूर्वजों का अनुगामी मत समझना। भय छा गया। इस समय भीमसेन ने भी मृगचर्म धारण किया। भीमसेन बार बार दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन को क्रोध भरी दृष्टि से देख रहा था। भीमसेन के ऐसे कहने और देखने पर दुशासन ने भरी सभा में कहा, ए बैल, ओ बैल, जुट जाओ, जाओ जंगल में। बैलों का स्थान जंगल में है, राजभवनों में नहीं है। यह कहकर निर्लज्ज की तरह नाचने कूदने लगा। भीमसेन ने कहा, रे दुष्ट, कटुवचन कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? छल से संपत्ति छीन कर अब बड़बड़कर बातें करते हो। यदि यह बृकोदर भीम कुंती की कोख से जन्मा है तो रणभूमि में तेरा कलेजा चीर कर खून पिएगा। फिर मैं तुम्हें कहता हूं, यदि ऐसा न कर सकूं तो पुण्यवानों का लोक नहीं मिलेगा। मैं सब धनुर्धरों के सामने धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का संहार करके ही शांति प्राप्त करूंगा। ये मेरी सत्य शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा है। पांडव राजसभा से बाहर निकलने लगे। भीमसेन क्रुद्ध हुए सिंह के समान लंबी लंबी सांसें लेता हुआ धीरे धीरे अपने डग आगे भर रहा था। दुर्योधन उन्हें चिढ़ाने के लिए वैसे ही थोड़ा पीछे पीछे चलने लगा, यूं उसकी चाल के अनुसार चलने लगा। भीमसेन ने मुड़कर देखा और कहा, रे मूर्ख, ये बात यहीं समाप्त नहीं हो रही है। 12 वर्ष या 13 वर्ष में तेरा मेरा हिसाब होने वाला नहीं है। मैं तेरे सहायकों के साथ तेरा नाश करते समय थोड़े ही दिनों में इस हंसी का उत्तर दे दूंगा। भीमसेन ने अपने को शांत करके धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते हुए कहा कि मैं दुर्योधन का, अर्जुन कर्ण का और सहदेव शकुनी का नाश करके रहेंगे। मैं भरी सभा में फिर सत्य शपथ पूर्वक कह के आया हूं, कह रहा हूं, देवताओं मेरी प्रतिज्ञा को आप लोग भी ध्यान से सुनना, और यदि मेरी प्रतिज्ञा गलत है तो भी मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा। आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा वास्तव में गलत नहीं है। मैं गदा से दुर्योधन की जान तोड़कर इसके सिर पर अपना पैर रखूंगा और दुशासन के कलेजे का गरम गरम खून पीऊंगा, तब मेरे कलेजे में शांति आएगी। अर्जुन बड़े गंभीर होकर बोले, भाई भीमसेन, शांत हो जाइए, आपकी अभिलाषा पूर्ण करने में आपका अनुज अर्जुन सदा आपकी प्रतिज्ञा में सहायक बनेगा। अर्जुन भी यह प्रतिज्ञा करता है कि वह इस संग्राम में कर्ण और उसके सारे साथियों का संहार करेगा। अपने साथ युद्ध करने वाले सभी मूर्खों को मैं यमराज के हवाले करूंगा। भाई जी, हिमालय अपने स्थान से डिग जाए, सूर्य में अंधेरा छा जाए, चंद्रमा में धधकती आग लग जाए, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। यदि 14वें वर्ष दुर्योधन ने हमारा राज्य सत्कार पूर्वक नहीं लौटाया तो हमारी वाणी अवश्य ही सत्य 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 होकर रहेगी। सहदेव ने कहा, अरे कंधार के कुल कलंक, शकुनी को बोलता है, अरे कंधार के कुल कलंक, जिन्हें तू पासे समझ रहा है वे तेरे लिए तीखे बाण हैं। मैं तेरा और तेरे संबंधियों का अपने हाथों सत्यानाश करूंगा। शर्त केवल यही है कि तू रणभूमि में क्षत्रियों की तरह डटकर भिड़ना, मुंह मत चुराना, कहीं भाग मत जाना। इस प्रकार पांडव बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। युधिष्ठिर ने कहा, ताऊ जी, मैं भरत वंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म सोमदत्त, वाल्लीक, गुरुदेव द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, विदुर, दुर्योधनादि सब भाई, युयुत्सु, संजय, अन्य सभी नरपति तथा सभासदों की आज्ञा लेकर वनवास के लिए जा रहा हूं। वहां से लौटने पर आप लोगों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय सभा के किसी सभासद ने युधिष्ठिर के प्रति कुछ भी नहीं कहा। लज्जा के कारण सबके सिर झुक गए थे। सब मन ही मन धर्मराज का कल्याण चाहने लगे। विदुर ने कहा, पांडवों, आर्या कुंती राजकुमारी कोमल शरीर वाली और वृद्धा है, वे सर्वथा आराम करने योग्य हैं, इसलिए इनका वन में जाना उचित नहीं है। यदि वे राजमहल में रहने में संकोच करती हैं तो ये सत्कार पूर्वक मेरे घर में रहें। ये बात आप लोगों से कहकर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि इस वनवास में आप लोग सर्वत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। युधिष्ठिर ने कहा, हे निष्पाप विदुर जी, हम आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। आप हमारे चाचा अर्थात पिता तुल्य हैं, हम सदा आपके आश्रित रहे हैं। विदुर जी ने कहा, युधिष्ठिर, आप धर्म के मर्मज्ञ हैं, अर्जुन विजयशील है, भीमसेन शत्रुनाशक है, नकुल धन संग्रह कुशल है और सहदेव शत्रुओं को वश में करने वाला है, धौम्य ऋषि वेदज्ञ हैं, पतिव्रता द्रौपदी धर्म और अर्थ के संग्रह में बड़ी निपुण है। आप सभी परस्पर प्रेम भाव से रहते हैं, शत्रु भी आपके चित्त में भेदभाव की सृष्टि कर नहीं सकते। आप बड़े निर्मल और संतोषी हैं, जगत के सभी लोग आपको चाहते हैं और आपके दर्शन के लिए उत्कंठित रहते हैं। हिमालय पर मेरु सावरणी, वारणावर्त में व्यास जी, भृगुतुंग पर्वत पर परशुराम जी, दृशतवदी नदी के तट पर महादेव जी आपको धर्म उपदेश दे चुके हैं। अंजन पर्वत पर आपने असित महर्षि से और कलमाशी नदी के तट पर भृगु मुनि से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। देवर्षि नारद तो सदा आपकी देखरेख करते ही रहते हैं और धौम्य मुनि तो आपके पुरोहित हैं ही। देखिए, विषम परिस्थिति में युद्ध के अवसर पर कहीं उन ऋषियों का उपदेश मत भूल जाना। हे पांडव श्रेष्ठ, आप पुरु रवा से भी अधिक बुद्धिमान हैं। कोई भी राजा शक्ति में आपकी समता नहीं कर सकता। धर्माचरण में आप ऋषियों से भी आगे हैं। शत्रुओं को अधीन करने में आप वरुण के समकक्ष हैं। आप जल के समान निर्मल और अपना जीवन दान करके भी दूसरों का हित करने वाले हैं। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप पृथ्वी से क्षमा सीखो, सूर्य मंडल से तेज प्राप्त करो, वायु से बल प्राप्त करो और समस्त प्राणियों से आत्मधन प्राप्त करो। आपका शरीर और आपका चित्त सदा प्रसन्न रहे। कोई भी काम करना हो तो उससे पहले कई देर तक खूब ठीक विचार विचार करके काम करना। आपने कभी कोई पाप किया है ऐसा मुझे स्मरण में नहीं आता है, इसलिए आप अवश्य कृतार्थ होकर आनंद से यहां लौटेंगे। अब आप जाइए, आपका कल्याण ही कल्याण है। राजा युधिष्ठिर विदुर जी की बातों को सिर आंखों चढ़ाकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को प्रणाम करके वनवास के लिए चल पड़े। माता कुंती को प्रणाम कर उनसे भी आज्ञा ले ली। जिस समय दुखा दुखा तुरा द्रौपदी अपनी सास कुंती एवं अन्य महिलाओं से विदा लेने के लिए आई, उस समय अंतःपुर में बड़ा कोलाहल हो गया। माता कुंती ने शोकाकुल वाणी से कहा, बेटी, तुम स्त्रियों का धर्म जानती हो, इस घोर संकट में पड़कर तुम दुख मत करना। तुम स्वयं शील और सदाचार से संपन्न हो, इसलिए पतियों के प्रति तुम्हारे कर्तव्य के संबंध में शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम सब जानती हो, तुम स्वयं परम साध्वी हो, गुणवती हो, दोनों कुलों की भूषण हो। हे निर्दोष द्रौपदी, तुमने कौरवों को शाप देकर भस्म नहीं किया, यह कौरवों का बड़ा सौभाग्य है और तुम्हारी बहुत बड़ी उदारता है। मैं तो इसी बात को देख देख कर सोच रही थी कि कहीं तुम्हारे मुख से एक वाणी की चिंगारी निकल गई तो सारा कुल भस्म हो जाएगा। तुमने बहुत धैर्य रखा द्रौपदी, मुझे इसी बात का संतोष है। तुम्हारा मार्ग निष्कंठ हो, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, कुलीन स्त्रियां अचानक दुख पड़ने पर घबराती नहीं है, पतिव्रत धर्म सदा तुम्हारी रक्षा करेगा, सब प्रकार से तुम्हारा मंगल होगा। एक बात तुमसे कहनी है, तुम वन में रहो उस समय मेरे प्यारे पुत्र सहदेव का विशेष ध्यान रखना, कहीं उसे कष्ट न होए। माता कुंती ने पांडवों से कहा, बेटा तुम लोग धर्मपरायण सदाचारी भक्त पाप रहित देवताओं के पुजारी हो, तुम पर यह संकट कैसे आ गया? अवश्य ये प्रारब्ध का दोष है, तुम लोगों ने अपने जीवन में ऐसा कोई अपराध नहीं किया, अवश्य मेरे कोई भाग्य का दोष है, क्योंकि तुम मेरी कोख से निकले हो, क्या पता मेरा कोई अपराध तुम पर चढ़ गया हो। अवश्य सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हारे दुख और संकट का शायद यही कारण है कि आप मेरे कोख से जन्म से कष्ट पा रहे हो। हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु, आप इस भयानक कष्ट से मेरी और मेरे महात्मा पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं करते? आप अनादि और अनंत हैं, जो आपका निरंतर ध्यान करते हैं उनकी आप रक्षा करते हैं, आपके संबंध की यह प्रसिद्धि इस समय कैसे झूठ हो रही है? मेरे पुत्र क्या धर्म में, क्या यश में, क्या पराक्रम में कम है? क्या उनके हृदय में आपके प्रति भक्ति कम है? उनके ऊपर ऐसा संकट क्यों आया है? हे भगवान, दया कीजिए। हाय रे, नीति और व्यवहार में कुशल भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि कुल के नायकों की उपस्थिति में ऐसी विपत्ति आ रही है, वे इनको विदा कर रहे हैं और कहते हैं जाओ बेटा वन में जाओ। बेटा सहदेव, तू तो मुझे प्राणों से अधिक प्यारा है, तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा, आ आ लौटा। माता कुंती अधीर होकर विलाप करने लगी, उनके करुण क्रंदन से रोते हुए पांडवों ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और वन की ओर चल दिए। विदुर जी ने कुंती के पास आकर कुंती को समझाया, कहा कि देखो कुंती, देवी की प्रबलता, भाग्य की प्रबलता, भाग्य सबसे बड़ा होता है। कोई सोचता है कि मैं अपनी धार्मिकता से, मैं अपने बल से, मैं अपने शस्त्र कौशल से भाग्य को पलट दूं, ऐसा नहीं होता है। भाग्य सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न होता है। भाग्य में जो परिस्थिति होती है उसका प्रतिकार केवल उसको सहन करना ही होता है। कौरव कुल की महिलाएं द्यूत सभा में द्रौपदी को ले जाना, उन्हें केस पकड़कर घसीटना आदि अत्याचार देखकर दुर्योधन आदि की निंदा करने लगी और सारी स्त्रियां फबक फबक कर रोने लगी। वे बहुत देर तक अपना मुंह हाथ पर रखकर इसी बात की चिंता करती रहीं, इन सब का अंतिम परिणाम क्या होगा। विषमपायन जी कहते हैं, ही जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का अन्याय सोचते सोचते बड़े उद्विग्न हो गए। उनको किसी प्रकार शांति नहीं मिल रही थी। एक बार घनघोर रात में जब उनका चित्त बड़ा अशांत हो गया, उन्होंने विदुर के पास दूत भेजा, बुलाया और अपने पास बैठाकर कहा, विदुर कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव पुरोहित धौम्य और यशस्विनी द्रौपदी ये सब किस प्रकार वन में जा रहे हैं, इस समय उनकी कैसी चेष्टा है, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। वे कितनी दूर गए हैं, मुझे विस्तार से इनका वर्णन सुनाओ, मेरा चित्त बड़ा अशांत है। विदुर जी ने कहा, महाराज आपने तो बड़े उत्साह से दोबारा जुआ खेलकर और शकुनी ने उनके साथ वही छल कर वन में भेज दिया, फिर आप वनवास के समाचार से आपको क्या मतलब है, क्यों पूछ रहे हो? विदुर, मुझे पांडवों से बड़ा प्रेम है, मुझे द्रौपदी की प्रीति याद आती है, वो हमारी कुलवधु है और पांडव मेरे छोटे भाई के बेटा है, मेरे अंदर उनके प्रति प्यार पैदा हो रहा है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं। विदुर जी ने कहा, महाराज आपका जो प्रेम वो तो सारी दुनिया जान चुकी, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूं। आपके पुत्रों ने छल छंद से महाराज युधिष्ठिर का राज्य और वैभव छीन लिया, फिर भी देखो धर्मराज युधिष्ठिर ने एक शब्द भी किसी के लिए कुछ नहीं कहा, उनकी बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हुई। कपटपूर्वक राज्य लिए जाने पर भी आपके पुत्रों पर दया का भाव रखते हैं, वे अपने क्रोधपूर्ण नेत्रों को बंद किए हुए बैठे थे, ऐसा इसलिए कि कहीं उनकी लाल लाल आंखों के सामने पड़कर कौरव भस्म न हो जाए, इसलिए उन्होंने उस द्यूत सभा में अपनी आंखें बंद करी। देखो ये पिछली बातें अब आ रही हैं। मैंने बहुत ध्यान से देखा युधिष्ठिर के नेत्र कैसे, आंखें बंद हैं। भीमसेन की बातें तो आपने सुनी हैं, अपने बाहुबल का बड़ा अभिमान, वो अपने को बड़ा बेजोड़ मानता है, इसलिए वे वन गमन के समय शत्रुओं को अपनी बाहें फैला फैला कर दिखा रहे थे कि समय आएगा इन बाहुबलों के अंदर तुमको मैं दबा दूंगा। कुंती नंदन अर्जुन धर्मराज के पीछे धूल उड़ाते चल रहे थे, इस प्रकार वे इस बात की सूचना दे रहे थे कि युद्ध के समय शत्रुओं पर कैसी बाण वर्षा करेंगे, धूल में जितने कण उड़ते हैं ऐसे बाण वर्षा करेंगे। इस समय जैसे वे धूल अलग अलग उड़ रही है, वैसे ही अर्जुन शत्रुओं पर अलग अलग बाण वर्षा करेंगे। सहदेव ने अपने मुंह पर धूल मल रखी है, युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलकर मानो वो ये कह रहे हैं कि कोई मेरा मुंह न देखे। नकुल ने तो अपने सारे शरीर में धूल ही धूल लगा दी, उसका अभिप्राय यह है कि मेरा सहज स्वरूप देखकर कहीं मार्ग की स्त्रियां मेरे पर मोहित न हो जाए। द्रौपदी इस समय रजस्वला है, वे एक ही वस्त्र पहने केश खोलकर रोती रोती जा रही है, उसका अर्थ यही है कि ऐसे बलवान वीर पतियों के रहते हुए आज हमारी ये दुर्दशा है। वे ये बता रही हैं कि आज मेरे पतियों के सामने मैंने अपने केश खुले रखे हैं, आज के 14वें वर्ष में मेरे स्वजनों की स्त्रियां अपने पतियों के मरने के बाद केश खुला रखेंगी, तभी मैं हस्तिनापुर में प्रवेश करूंगी। सबके आगे आगे चल रहे हैं पुरोहित धौम्य, वे नैऋत्य कोण के और कुशों के नोक करके यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गायन कर रहे हैं। उसका अर्थ यह है कि रणभूमि में कौरवों के मारे जाने पर इस प्रकार से मंत्रों का गान होगा और बड़ी शांति हो जाएगी। पांडवों की वन यात्रा से विकल होकर सभी नागरिक विलाप करते हुए कह रहे कि हाय हाय, हमारे प्यारे सम्राट इस प्रकार वन में जा रहे हैं तो कुरुकुल के बड़े बड़े राजाओं को, बूढ़ों को और बुद्धिमानियों को, सबको धिक्कार है। प्रजा ये कह रही है आपके लिए। वे लोभवश धर्मात्मा पांडवों को देश से निकाल रहे हैं। हम तो अब अनाथ हो गए, हम अन्यायी कौरवों के साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। प्रजा इस प्रकार बिगड़ रही है। और इधर पांडवों के जाते ही आकाश में बिना मेघ के बिजली चमक रही है, पृथ्वी थर्रा गई है, बिना अमावस्या के सूर्य ग्रहण लग गया है, नगर के दाहिनी ओर उल्कापात हो रहा है, गीद गीदड़ और कौवे आदि मांस भक्षी जीव देवालयों, बुर्जों, किलों और अटारियों पर मांस और हड्डियां डाल डाल करके भयंकर समय की विनाश की सूचना दे रहे हैं। इन उत्पातों का फल क्या है? भरत वंश का सत्यानाश। और ये सब आपके मोहपूर्ण बुद्धि का फल है। जिस समय विदुर जी धृतराष्ट्र से ये कह रहे थे, उसी समय नारायण 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 करते हुए वीणा बजाते हुए अनेक से ऋषियों के साथ नारद जी आ पहुंचे और ये भयानक बात कहकर चलते बने कि दुर्योधन के अपराध के फलस्वरूप आज के 14वें वर्ष भीमसेन और अर्जुन के हाथों ही धृतराष्ट्र तुम्हारे कुरुवंश का नाश होगा। ये देवर्षि नारद की वाणी सत्य होकर रहेगी। अब दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने द्रोणाचार्य को ही अपना प्रधान आश्रय समझकर पांडवों का सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, भरतवंशियों, तुम पांडवों को सामान्य मत समझो, ये देवताओं के पुत्र हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। ये बात सभी ब्राह्मण कहते हैं, फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मेरी शरण ली है, इसलिए इनके सहायक राजाओं के साथ मैं अपनी शक्ति के अनुसार पूरी पूरी सहायता करूंगा। मैं सहायता कर सकता हूं, तुम्हारी विजय दिला दूं मेरे हाथ की बात नहीं, क्योंकि मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध करूं, परंतु आज मुझे काम करना पड़ रहा है। क्या करूं, दैव ही सबसे बलवान है। कौरवों, पांडवों को वन में भेजने से तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, तो मैं अपनी भलाई का प्रबंध शीघ्र करना चाहिए। ये राज्य वगैरह स्थाई नहीं होते, 4 दिन की चांदनी है, 2 घड़ी का खिलवाड़ है, इससे फूलो मत। बड़े बड़े यज्ञ करो, ब्राह्मणों को दान दो, अपना हृदय पवित्र बनाओ, जो कुछ बने वो सुख दूसरों को तुम बांटना चालू करो। 14वें वर्ष तुम्हें बड़े कष्ट में पड़ना पड़ेगा। द्रोणाचार्य की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी, गुरु जी का कहना ठीक है, हाँ जाओ तुम पांडवों को लौटा लाओ। 14वें वर्ष की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया, नारद जी भी ऐसा बोलते हैं, द्रोणाचार्य ऐसा बोलते हैं, अब उनको लौटा लाओ। यदि वे लौट कर न आवे तो उनको शस्त्र रथ और सेवक साथ में दो। ऐसा प्रबंध करो कि मेरे पुत्र पांडव वन में सदा सुखी रहे। ऐसा कहकर एकांत में चले गए, चिंता करने लगे, उनकी सांस लंबी लंबी चलने लगी, चित्त बड़ा व्याकुल हो गया। उसी समय संजय ने उनसे कहा, महाराज आपने पांडवों को राज्यच्युत करके वनवासी बना दिया, उनका धन वैभव भूमि हत्या ली, अब आप शोक भी कर रहे हो, आप अपराध भी करते हो और शोक भी करते हो, ये क्या है? ये धृतराष्ट्र ने कहा, संजय पांडवों से बैर करके भी भला किसी को सुख मिल सकता है क्या? तो फिर आपने क्यों बैर लिया? मैं अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन को दुखी नहीं देख सकता था। संजय ने तनिक गंभीर होकर कहा, महाराज ये निश्चित है कि अब तो आपके कुल का नाश होकर रहेगा, ये प्रजा बिचारी कोई अपराध की भागी नहीं है, पर फिर भी प्रजा मरेगी, इसका पाप किसको लगेगा? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जी ने आपके दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को बहुत रोका, फिर भी उस निर्लज्ज ने पांडवों की प्रिय पत्नी धर्मपरायणा द्रौपदी को सभा में बुलवाकर अपमानित किया। ये जो विपत्ति का बीज बोया है, इसको आपने और ज्यादा पनपा दिया वनवास भेज करके। विनाश के समय पर अवश्य ही मनुष्य की बुद्धि मलिन हो जाती है, अन्याय भी न्याय के समान दिखने लगता है। ये बात हृदय में इतनी बैठ जाती है कि मनुष्य अनर्थ को स्वार्थ और स्वार्थ को अनर्थ देखता है और मर मिटता है। काल डंडा मारकर किसी का सिर नहीं तोड़ता है, काल डंडा मार करके नहीं मारता है, उसका बल तो इतना ही है कि वो बुद्धि को विपरीत करे और फिर उससे बुरा कर्म करे और फिर बुरे का फल उसको दिलवाए। आपके पुत्रों ने अयोनिजा, पतिव्रता, अग्निवेदी से उत्पन्न द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करके भयंकर युद्ध का निमंत्रण दिया। ऐसा निंदनीय काम दुष्ट दुर्योधन के अतिरिक्त कौन कर सकता था? धृतराष्ट्र ने कहा, संजय तुम बार बार क्यों ऐसी बात बोलते हो? मैं कई बार कह चुका हूं ये तो गलती है, इतनी गलती नहीं करनी चाहिए थी। ये मैं भी समझता हूं द्रौपदी की आर्त दृष्टि से सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है, हमारे पुत्रों की तो इसमें औकात भी क्या है? उस समय धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में अपमानित होते देखकर भरत वंश की सभी स्त्रियां गांधारी के पास जाकर करुण क्रंदन करने लगी थी। ब्राह्मण भी हमारे विरोधी हो गए थे, वे सायंकाल हवन न करके नागरिकों के साथ उन्हीं बातों की चर्चा करते हैं और दुखी होते रहते हैं। जिस समय द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए थे, उस समय बड़ा तूफान आया था, बिजली गिरी थी, उल्कापात हुआ था, बिना अमावस्या के सूर्य ग्रहण लग गया, प्रजा भयभीत हो गई, रथशाला में आग लग गई, मंदिरों की ध्वजाएं गिरने लगी, यज्ञशाला में सियारे ने हुआ हुआ करने लगी, गधे रेंकने लगे। ऐसे अपशकुन देखकर भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त, वालिक और द्रोणाचार्य सभा भवन से उठकर बाहर चले गए थे। विदुर की सम्मति से मैंने द्रौपदी को मुंह मांगा वरदान दिया, पांडवों को इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति दे दी। उसी समय विदुर ने मुझसे कहा था कि द्रौपदी को अपमानित करने के फलस्वरूप भरत वंश का नाश होगा, ये मैं कई बार सुन चुका हूं। द्रौपदी दैव के द्वारा उत्पन्न एक अनुपम लक्ष्मी है, वह पांडवों के पीछे पीछे रहती है। ये महान अपमान और क्लेश पांडव, यदुवंशी और पांचाल नहीं सहेंगे, क्योंकि इनके सहायक और इनके रक्षक सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण हैं। बहुत समझा बुझाकर विदुर ने हमारे कल्याण के लिए अंत में यही सम्मति दी कि आप सबके भले के लिए पांडवों से संधि कर लीजिए। संजय विदुर की बात धर्मानुकूल तो थी ही, अर्थ की दृष्टि से भी बड़ी लाभ की बात थी, परंतु संजय ने कहा इतना अच्छा आप भाव रखने के बाद फिर परंतु की क्या जरूरत पड़ी। परंतु इन सब बातों से मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन प्रसन्न नहीं था, उसकी प्रसन्नता के लिए मुझे ये सब करना पड़ा और सब बातों की उपेक्षा कर दी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्मेजय ने पूछा हे महर्षि, दुरात्मा दुर्योधन दुशासन आदि ने अपने मंत्रियों की सहायता से कपट द्यूत में पांडवों को जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बैर भाव बढ़ाने के लिए बहुत भला बुरा भी कहा। तदनंतर मेरे पूर्वज पांडवों ने इस विपत्ति में पड़कर किस प्रकार समय बिताया, उनके साथ वन में कौन कौन गए, वे वन में कैसा बर्ताव करते थे, क्या भोजन करते थे, कहां रहते थे, वन में उनके 12 वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुए, परम सौभाग्यवती सत्यवादिनी राजकुमारी द्रौपदी ने किस प्रकार वन के दुखों को सहा, इन सब बातों का वर्णन करके मेरी उत्कंठा शांत कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा जन्मेजय, महात्मा पांडव दुरात्मा दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहार से बहुत दुखी हो गए, क्रुद्ध होकर अपने अस्त्र शस्त्र और रानी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से निकल पड़े। वे हस्तिनापुर के वर्धमानपुर के सामने वाले द्वार से निकलकर उत्तर की ओर चल पड़े। इंद्रसेन आदि 14 सेवक भी अपनी स्त्रियों के साथ शीघ्रगामी रथों पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब हस्तिनापुर की जनता को यह मालूम हुआ तो उनके दुख का कोई पारावार न रहा। सब लोग शोक से व्याकुल होकर इकट्ठे हुए, निर्भयता के साथ कहने लगे हमारे हस्तिनापुर में पितामह भीष्म के रहते, आचार्य द्रोण के रहते हुए ये क्या दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। ये आपस में कहने लगे दुरात्मा दुर्योधन शकुनी आदि की सहायता से राज्य करना चाहता है, इसके राज्य में हम हमारा वंश प्राचीन सदाचार और घर द्वार भी सुरक्षित रहेंगे इसकी आशा नहीं है, ये महान पापी है, उसके सहायक भी पापी हैं, भला कुल मर्यादा आचार धर्म और अर्थ ये कैसे सुरक्षित रह पाएंगे, और इनके न रहने पर सुख की आशा करनी व्यर्थ है। दुर्योधन एक तो अपने गुरुजनों से द्वेष करता है, दूसरे वंश की मर्यादा और अपने सुहृद संबंधियों का भी त्याग कर चुका है, केवल वो अर्थ लोलुप है, घमंडी है और क्रूर शासन में इस पृथ्वी का ही सर्वनाश निश्चित है। आओ हम सब मिलकर वहीं चलें जहां हमारे महात्मा पांडव जाते हों, वे दयालु जितेंद्रिय यशस्वी एवं धर्मनिष्ठ हैं। हस्तिनापुर की जनता इस प्रकार आपस में विचार करके वहां से चल पड़ी और पांडवों के पास जाकर बड़ी नम्रता से कहने लगी पांडवों आप लोगों का कल्याण हो, हम लोग आप लोग हमें हस्तिनापुर में दुख भोगने के लिए छोड़कर कहां जा रहे हो, आप लोग चले जाएंगे वहीं हम भी चले जाएंगे। जब से हमें ये बात मालूम हुई है कि दुर्योधन आदि ने बड़ी निर्दयता से कपट द्यूत में हराकर आप लोगों को वनवासी बना दिया है, हम लोगों के हृदय में बड़ा भारी भय पैदा हो गया है, हमें ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना उचित नहीं है, हम आपके सेवक प्रेमी और हितेशी हैं, कहीं दुरात्मा दुर्योधन के कुराज्य में हमारा सर्वनाश न हो जाए। आप जानते हैं दुष्ट पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या हानियां हैं और सत्पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या लाभ है। जैसे सुगंधित पुष्पों के संसर्ग से जल सुगंधित होता है, तिल और स्थान सुगंधित हो जाते हैं, वैसे मनुष्य भी अच्छे मनुष्य अच्छे पुरुषों के साथ संग करने पर अच्छा होता है और बुरे के साथ संबंध करने पर बुरा हो जाता है। दुष्टों के संग से मोह की वृद्धि होती है और सत्पुरुषों के साथ से धर्म की वृद्धि होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि ज्ञानी, वृद्ध, दयालु, शांत, जितेंद्रिय और तपस्वी पुरुषों का संग करें। कुलीन, विद्वान एवं धर्मपरायण पुरुषों की सेवा और उनका सत्संग शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर होता है। सत्संग है वो शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर। पापी पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप करने से, उनके पास बैठने से स्वतः ही धर्म और सदाचार का नाश हो जाता है। नीचों के संग से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सत्पुरुषों के संग से वो बुद्धि उन्नत हो जाती है। जगत के गुप्त से गुप्त और श्रेष्ठ महात्माओं ने भी मनुष्यों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए सत्संगी ही बताया है। लोक व्यवहार में जिन आचरणों की आवश्यकता है वे सत्पुरुषों के पास ही सीखने को मिलते हैं, इसलिए हम आपके साथ रहना चाहते हैं, इसी में हमारा कल्याण है। प्रजा की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से कहा, हे मेरे पूजनीय और आदरणीय ब्राह्मण आदि प्रजाजन, वास्तव में हम लोगों में कोई गुण नहीं है, फिर भी आप लोग स्नेह और दया के वश हम में गुण देख रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, यह आप लोगों का एक गुण होगा। मैं अपने भाइयों के साथ आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप अपने प्रेम और कृपा से हमारी बात को स्वीकार करें। इस समय हस्तिनापुर में पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, हमारी माता कुंती और गांधारी तथा हमारे सभी सगी संबंधी निवास कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए आप लोग दुखी हो रहे हैं, वैसे उनके हृदय में भी बड़ा शोक और कष्ट हो रहा है। आप लोग हमारी प्रसन्नता के लिए वहां लौट जाइए और उनका पालन पोषण और देख रेख कीजिए। आप लोग बहुत दूर तक आ गए, अब आगे न चलें। मेरे तो स्वजन संबंधी आप लोगों के पास धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। मेरी माँ जब वहां पर बैठी हुई है, मेरे पितामह भीष्म वहां बैठे हुए हैं, तो मैं आपको हृदय की बात, सच्ची बात कह रहा हूं, आपको वहीं रहना चाहिए। इसमें हमको बड़ा संतोष होगा और मैं इसे अपना सत्कार ही समझूंगा। सब प्रजाजन ये बात सुनकर गदगद हो गए। पांडवों के गुण स्वभाव आदि का स्मरण करके उनकी आकुलता की सीमा न रही और इच्छा न होने पर भी पांडवों की बार बार लौटाने से वे वापिस अपने पुरजन की ओर, हस्तिनापुर की ओर लौट गए। तब पांडव रथ पर सवार होकर गंगा तट पर प्रमाण नामक बहुत बड़े बरगद के पास आए। उस समय संध्या हो गई थी। वहां उन्होंने हाथ मुंह धोया और केवल जलपान करके रात बिताई। उस समय बहुत से ब्राह्मण प्रेमवश पांडवों के पास आए, उनमें बहुत से अग्निहोत्री भी थे। उनकी मंडली में बैठकर पांडवों ने सभी प्रकार की चर्चा करते हुए रात बिताई। रात बीत जाने पर पांडव नित्य कर्म से निवृत्त हुए। जब उन्होंने जाने की तैयारी की, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, महात्माओं, इस समय हमारा राज्य लक्ष्मी और सर्वस्व शत्रुओं ने छीन लिया है। हम कंदमूल फल का भोजन करते हुए वन में निवास करने जा रहे हैं। वन में बड़े बड़े विघ्न और बाधाएं हैं, इसलिए आप लोगों को वहां बड़ा कष्ट होगा। आप लोग अब अपने अपने अभीष्ट स्थान को चले जाएं। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, प्रेम के कारण हम लोग आपके साथ रह रहे हैं, हमें आप अपने पास रखने की कृपा कीजिए। धर्मराज, हमारे पालन पोषण खाने पीने की आप तनिक भी चिंता न करें, हम अपने आप अपने भोजन का प्रबंध कर लेंगे और आपके साथ वन में रहेंगे। वहां बड़े प्रेम से अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे, इससे आपका भी तो कल्याण होगा। आपस में सुंदर सुंदर कथाएं, भगवान का गुणानुवाद और आत्मकल्याण संबंधी चर्चा होगी। धर्मराज ने कहा, महात्माओं आप लोगों का कहना ठीक है, मैं सर्वदा ऐसी संगति करना चाहता हूं, परंतु मेरे पास इस समय धन नहीं है, लाचारी है। मैं ये बात कैसे देख सकूंगा कि आप लोग स्वयं अपने भोजन का प्रबंध करें और मैं वहां खड़ा खड़ा देखता रहूं, मेरे कारण आपको कितना कष्ट होगा। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार शोक प्रकट किया और उदास होकर पृथ्वी पर बैठ गए, तब आत्मज्ञानी शौनक ने उनसे कहा, राजन अज्ञानी मनुष्यों के सामने प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों शोक तथा भय के अवसर आया ही करते हैं, पर वो ज्ञानियों के सामने नहीं आते। आप जैसे सत्पुरुष ऐसे अवसरों में कर्म बंधन में कभी नहीं पड़ सकते, आप तो सर्वदा इन सब से मुक्त हैं। आपकी चित्तवृत्ति यम नियम और अष्टांग से परिपुष्ट है, श्रुति और स्मृति के ज्ञान से संपन्न है। आपकी जैसी अटल बुद्धि जिसे प्राप्त है, वो संपत्ति के नाश से या अन्न वस्त्र के न मिलने से या घोर से घोर विपत्ति के समय में भी दुखी नहीं होते। कोई भी शारीरिक अथवा मानसिक दुख उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। महात्मा जनक ने जगत को शारीरिक एवं मानसिक दुख से पीड़ित देखकर उसकी शांति के लिए ये बात कही थी, आप उनके वचन सुनो। शरीर के दुख के चार कारण होते हैं, एक रोग, एक दुखद वस्तु का स्पर्श, एक अधिक परिश्रम और एक अभिलषित वस्तु का न मिलना। चार कारण से शरीर में दुख होते हैं। इन निमित्तों में से मन में चिंता हो जाती है और मानसिक दुख ही शारीरिक दुख का रूप धारण कर लेता है। लोहे का गर्म गोला यदि घड़े के जल में डाल दिया जाए तो वह जल भी गर्म हो जाता है। वैसे ही मानसिक पीड़ा से शरीर भी व्यथित हो जाता है। इसलिए जैसे जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को हरदम समझाते हुए शांत रखना चाहिए। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मन के दुखी होने पर ही शरीर का दुख दुखदायी मालूम देता है, क्योंकि शरीर दुख का अनुभव नहीं करता है, दुख का अनुभव सदा मन करता है। स्नेह के कारण मनुष्य विषयों में फंसता है, अनेक प्रकार के दुख भोगता है। स्नेह के कारण दुख भय शोक आदि विकारों को प्राप्त होता है। स्नेह के कारण ही विषयों की सत्ता का अनुभव होता है और फिर उनमें राग होता है, और विषयों का चिंतन करने से राग से भी बढ़कर और ज्यादा स्नेह हो जाता है। जैसे खोडर की आग सारे वृक्ष को जला डालती है, वैसे ही विषयों में थोड़ा सा भी राग धर्म और अर्थ का सत्यानाश कर देता है। विषयों के नयन मिलने पर जो अपने को त्यागी मानता है, वह त्यागी थोड़े ही है। वास्तव में सच्चा त्यागी वो है जो विषयों के मिलने पर उनमें दोष दृष्टि रखता है और अपना मन उन विषयों में बिल्कुल नहीं जाने देता। विरक्त पुरुष द्वेष रहित ही होता है, इसलिए उसे किसी कर्म बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। जगत में मित्र और धन का संग्रह तो करना चाहिए, परंतु आसक्ति नहीं करनी चाहिए। विचार के द्वारा स्नेह का त्याग होता है। जैसे कमल के दल पर जल अटल नहीं रह सकता, वैसे ही विवेकी भगवत प्राप्ति के इच्छुक और आत्मज्ञानी पुरुष के चित्त में किसी के प्रति भी स्नेह टिक नहीं सकता है। विषयों के दर्शन से उसमें रमणीय बुद्धि होती है, फिर प्रियता मालूम लगती है, फिर लेने की इच्छा होती है, फिर मिल जाने पर उसकी चाट लग जाती है, और फिर बार बार पाने की तृष्णा होती है। यही तृष्णा सारे पापों का मूल है, उद्वेग की जननी है, अधर्म से पूर्ण और भयंकर है। मूर्ख व्यक्ति इसका त्याग नहीं करते। बूढ़े होने पर भी इस तृष्णा का त्याग नहीं करते। यह शरीर के साथ मिटने वाली बीमारी है, इसका त्याग करने से ही सुख मिलता है। जैसे लोहे के भीतर प्रवेश करके आग उसका नाश कर देती है, वैसी प्राणियों के हृदय में ये तृष्णा प्रवेश करके उसका नाश कर देती है और स्वयं कभी नहीं मिटती। जैसे ईंधन अपनी ही आग से भस्म हो जाता है, वैसे ही लोभी पुरुष स्वाभाविक लोभ से ही नष्ट हो जाता है। जैसे प्राणियों के सिर पर मृत्यु का भय सर्वदा सवार रहता है, वैसे ही धनी पुरुषों को राजा, जल, अग्नि, चोर और कुटुंब का सदा ही भय खाता रहता है। जैसे मांस को आकाश में पक्षी, पृथ्वी पर हिंसक जीव और जल में मगरमच्छ खा जाते हैं, वैसे ही धनी पुरुष के धन को भी सब कहीं दूसरे लोग ही भोगा करते हैं। मूर्खों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े बुद्धिमानों के लिए भी धन अनर्थ का कारण है। वे धन से सिद्ध होने वाले फलों के लिए कर्म में लगे रहते हैं। सभी प्रकार के धन लोभ, मोह, कंजूसी, घमंड, हेकड़ी, भय और उद्वेग को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इस धन को बहुत सावधानी से इसका उपयोग करना चाहिए। धन की चिंता करना अपना नाश करने के समान है। इसी से अज्ञानी असंतुष्ट रहते हैं। सच्चा संतोष भी परम शांति का कारण होता है। बुद्धिमान पुरुष उन्हें कभी नहीं चाहते। इसलिए उचित यह है कि सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का त्याग करें और त्याग करने के कारण जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़े उसको बड़ी प्रसन्नता से उठाए। अब तक जगत में कोई भी संग्रही अपने संग्रह के कारण सुखी नहीं हो सका और अपने संग्रह का पूरा भोग भी नहीं भोग सका और संसार से चल दिया। जब अंत में कीचड़ को धोना ही पड़ेगा तो उसको छुआ ही क्यों जाए। इसलिए आप किसी भी वस्तु की इच्छा मत करना। यदि आप अपने धर्म में अटल रहना चाहते हो तो धन की इच्छा तो बिल्कुल मत करना। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण हूं मैं, आपके वचनों से तृप्त नहीं हुआ। ऐसा मन करता है मैं ये आपके वचन सुनता ही चला जाऊं। मैं धन नहीं चाहता हूं, मैं स्वयं उसका उपभोग करूं ऐसी मैं इच्छा कभी करता ही नहीं हूं। मैं तो केवल ब्राह्मणों का भरण पोषण चाहता हूं। मेरे चित्त में धन का तनिक भी लोभ नहीं है। मैं पांडुवंशी गृहस्थ हूं, ऐसी अवस्था में अनुयायियों का पालन पोषण कैसे नहीं करूं। गृहस्थ पुरुष के भोजन में सभी प्राणी का हिस्सा होता है। गृहस्थ के लिए यह धर्म है कि वो अपने भोजन से सन्यासी को तृप्त करे, वो अपने भोजन से वानप्रस्थी को तृप्त करे, वो अपने भोजन से गृहस्थियों को तृप्त करे और ब्रह्मचारियों को तृप्त करे। सत्पुरुषों के घर में तिनकों के आसन, बैठने के स्थान, जल और मीठी बात का कभी अभाव नहीं होता है। दुखी को सोने के लिए शैया, थके मांदे के लिए बैठने को आसन, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन तो देना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। जो अपने पास आए उसको प्रेम भरी दृष्टि से देखो, मन से उसके प्रति सद्भाव करो, उसके साथ मधुर वाणी से बोलो, उसको उठकर आसन दो, अतिथि को आतावा देखकर अगवानी करो, सत्कार करो। जो गृहस्थ, अग्निहोत्र, गऊ जाति वाला, अतिथि, भाई बंधु, स्त्री पुत्र और सेवकों का सत्कार नहीं करता उसे भी जला डालते हैं। गृहस्थ देवता और पितरों के लिए भोजन बनाए, उन्हें अर्पण किए बिना अपने काम में नहीं लेना चाहिए। कुत्ते, चांडाल और पक्षियों के लिए भी भोजन अलग निकाल के दो। ये बलि वैश्वदेव कर्म है। बलि वैश्वदेव करके और दूसरों को खिलाकर खाना अमृत भोजन है। अतिथि को प्रेम की दृष्टि से देखो, मन से उसका भला चाहो, सत्य और मीठी वाणी से बोलो, अपने हाथ से उसकी सेवा करो, जाने के समय उसके पीछे पीछे चले। इसका नाम पंच दक्षिण यज्ञ है। कोई अनजान मनुष्य थका मांदा मार्ग में मिल जाए तो अपने पास से खिलाओ, पिलाओ और उसके शरीर की भी सहायता दो। जो गृहस्थ में रहकर इस प्रकार व्यवहार करता है वह अपने धर्म से इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा पुण्य का काम करता है। सौनक जी ने कहा, सचमुच युधिष्ठिर, इस जगत की चाल कुछ उल्टी है। आप जैसे सत्पुरुष दूसरों को खिलाए बिना स्वयं खाने पीने में संकोच करते हैं, और दुष्ट लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों का हक खा जाते हैं। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, मनुष्य उनके फंदे में फंसकर ऐसा मूर्ख हो जाता है कि उसे मार्ग कुमार्ग का ज्ञान ही नहीं रहता। जिस समय इंद्रियां और विषयों का संयोग होता है, उस समय पूर्वकालीन संस्कार मन के रूप में जागृत हो जाते हैं। मन जिस इंद्रिय के विषय के पास जाता है, उसी को भोगने के लिए उत्सुक हो जाता है और प्रयत्न करने लगता है। देखो, संकल्प से कामना पैदा होती है और विषयों का संयोग रहता है। इन दोनों में पुरुष विवश हो जाता है और रूप के लोभ से पतंगे के समान आग में गिर जाता है। वह अपनी वासना के अनुसार रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के भोगों में इस प्रकार घुल मिल जाता है कि उसे अपने आप की भी याद नहीं रहती। अज्ञान के कारण कामनाएं, कामना पूर्ति होने पर तृष्णा, तृष्णा के कारण अनेक प्रकार के उचित अनुचित कर्म करता है, फिर तो कर्म के अनुसार अनेक योनियों में भटकना ही पड़ता है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जलचर थलचर नवचर प्राणियों में उसे चक्कर काटना पड़ता है। यह गति तो बुद्धिहीन विषयासक्त प्राणियों की होती है, परंतु जो लोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्य का पालन करते हैं, जगत के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, उन बुद्धिमानों की बात सुनो। कर्म करो और कर्म छोड़ दो, ये दोनों ही बातें वेदाज्ञा है। कर्म करो भी और कर्म छोड़ो भी, उसका त्याग करने वाला भी वेदाज्ञा समझकर त्याग करता है और कर्म करना भी वेदाज्ञा समझ करके उसको कर्म करता है। धर्म के 8 मार्ग हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान, तपस्या, सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह और निर्लोभता। इनमें जो पहले 4 हैं, वे कर्म रूप हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान और तपस्या। और सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह और निर्लोभता, ये 4 मन के धर्म हैं। इनका अनुष्ठान कर्तव्य बुद्धि से अभिमान छोड़कर करना चाहिए। जो लोग संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भलीभांति इन नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, अपना संकल्प शुद्ध रखो, अपने इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अहिंसा आदि व्रत का पालन करो, अपने से बड़ों की सेवा करो, भोजन के अंदर शुद्धि रखो, नियमितता रखो, सत्शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक श्रवण करो, स्वाध्याय करो, कर्म फल में किसी प्रकार आसक्ति मत रखो और अपने चित्त को परमात्मा में लगाओ। इन नियमों के पालन से बड़े बड़े देवता अपने अपने अधिकार में स्थित हो जाते हैं। धर्मराज, आप भी नियमों और तपस्या के द्वारा सिद्धि प्राप्त कीजिए, जिससे ब्राह्मणों के भरण पोषण की शक्ति आपको मिल जाए। शौनक जी का यह उपदेश सुनकर महाराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य के पास आए और अपने भाइयों के सामने उनसे कहने लगे, भगवान, धौम्य ऋषि को कह रहे हैं युधिष्ठिर, भगवान, वेदों के बड़े बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ वन में रह रहे हैं, उनके पालन पोषण की मुझमें सामर्थ्य नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूं। मैं न तो इनका पालन पोषण कर सकता हूं और न इन्हें मैं छोड़ ही सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। धौम्य ऋषि ने योग दृष्टि से कई देर तक चिंतन करने के बाद उन्होंने एक विचार किया, धर्मराज को कहा, हे धर्मराज, सृष्टि के आरंभ में सभी प्राणी भूख से व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने दया करके पिता के समान अपने किरण करों से पृथ्वी का रस खींचा और फिर दक्षिणायन के समय उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर लिया, तब चंद्रमा ने उसमें औषधि का बीज डाला और उसके फलस्वरूप अन्न की उत्पत्ति हुई। उसी अन्न से प्राणियों ने अपनी भूख मिटाई। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य की कृपा से अन्न उत्पन्न होता है, सूर्य ही समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, वही सबके पिता है, इसलिए तुम सूर्य की शरण ग्रहण करो और उनके कृपा प्रसाद से ब्राह्मणों का भरण पोषण करो। पुरोहित धौम्य ने धर्मराज को सूर्य की आराधना पद्धति बताते हुए कहा, मैं तुम्हें सूर्य के 108 नाम बताता हूं, सावधान होकर के सुनो। सूर्य अरेमा भग त्रष्टा आदि 108 नाम बताए। धर्मराज, अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के ये 108 नाम हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसका वर्णन किया है। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता, पितर, यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस और सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, तपाए हुए सोने और अग्नि के समान जिनकी कांति है, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूं। जो मनुष्य सूर्योदय के समय एकाग्र होकर इसका पाठ करता है, उसे स्त्री, पुत्र, धन, पुत्रों, धन रत्नों की राशि, पूर्व जन्म का स्मरण, धैर्य और श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पवित्र होकर शुद्ध एकाग्र मन से भगवान सूर्य की इस स्तुति का पाठ करता है, वो समस्त शोकों से मुक्त हो जाता है। पुरोहित की बात सुनकर सूर्य भगवान की आराधना एवं तपस्या में युधिष्ठिर महाराज लग गए। अब मैं उनके 108 नाम सुनाता हूं। सूर्य अर्यमा भग त्वष्टा पूषा अर्क सविता रवि गभस्तिमान अज काल मृत्यु धाता प्रभाकर पृथ्वी तेज पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्वरूप सोम बृहस्पति शुक्र बुध मंगल इंद्र विवस्वान दीप्तांशु शुचि सौरी शनिश्चर ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्कंद यम वैद्युत अग्नि जाठर अग्नि ऐंधन अग्नि तेजस्पति धर्मध्वज वेदकर्ता वेदांग वेदवाहन सत्य त्रेता द्वापर कली कला काष्ठा मुहूर्त क्षपा याम क्षण संवत्सरकर अश्वत्थ कालचक्र विभावसु शाश्वत पुरुष योगी व्यक्त अव्यक्त सनातन कालाध्यक्ष प्रजाध्यक्ष विश्वकर्मा तमोनुद वरुण सागर अंश जीमूत जीवन अरिहा भूताश्रेय भूतपति सर्वलोक नमस्कृत स्रष्टा संवर्तक वाहनी सर्वादि अलोलुप अनंत कपिल भानु कामद सर्वतोमुख शय विशाल वरद सर्वधातु निषेचिता मन सुपर्ण भूतादि शीघ्रग प्राणधारक धनवंतरी धूमकेतु आदिदेव अदिति पुत्र द्वादशात्मा अरविंदाक्ष माता पिता प्रपितामह रूप स्वर्गद्वार प्रजाद्वार मोक्षद्वार त्रिविष्टप देहकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुख चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेय और करुणान्वित। ये 108 नाम है। युधिष्ठिर महाराज तपस्या में लग गए। अब उनको सूर्य भगवान एक पात्र देंगे और उस पात्र के अंदर कितने को भोजन कराओ ऐसा वरदान भी दे देंगे। वो कथा कल आएगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।